अगला दिन, हवेली की सुबह, नाश्ते का वक्त, सब साथ पर दिल अलग अलग धड़कनों में। सुबह की धूप हवेली के आंगन में फैल चुकी थी। हल्की हवा में नीम के पेड़ों की पत्तियां सरसराती हुई और भीतर रसोई से आती गरम पराठों और इलायची चाय की खुशबू पूरे माहौल में घुलती जा रही थी। डाइनिंग हॉल में आज पहली बार हलचल थी। कुर्सियां खिसकी, चम्मचों की आवाज आई और एक एक करके सभी लोग टेबल पर बैठने लगे। रत्ना देवी सबसे पहले आई। चेहरे पर कल की थकान थी पर आंखों में राहत की चमक। उनके पीछे विशाल, रम्या, शकुंतला, सबके चेहरों पर एक ही बात, आज ये हवेली फिर से सांस ले रही है। श्यामली चुपचाप टेबल के किनारे बैठी हुई थी, नजरें झुकी हुई, आवाज एक भी नहीं, पर उसके चेहरे की पीली पड़ती चमक सब कुछ चुपचाप बताती थी कि उसने कल रात बिल्कुल नहीं सोया। वो हर आवाज सुन रही थी पर किसी से नजर नहीं मिला पा रही थी, मानो अभी भी पकड़े जाने की शर्म और डर उसके चारों ओर फैला हो। तभी नौकरानी मधु प्लेटें लाती हुई धीरे से बोली, आज तो जश्न होना चाहिए, सब एक साथ नाश्ता कर रहे हैं और साहब ठीक भी हो गए, इतने दिनों बाद घर में रौनक आई है। रत्ना देवी ने मधु की बात पर मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, मेरा बेटा ठीक हो गया, इससे बड़ी खुशी क्या होगी। उसकी आवाज में वो गर्माहट थी जो सिर्फ एक माँ के दिल में होती है। सबने हामी में सिर हिलाया। रम्या बोली, आज तो पूरा दिन खुशियों में बीतना चाहिए, मामा जी को आराम भी मिलेगा। विशाल ने हंसकर कहा, और शाम को छोटा सा जश्न हो जाए सब परिवार के साथ। शकुंतला बोली, लो जी, जश्न तो बनता ही है, इतनी बड़ी दुआ कबूल हुई है। सबके चेहरे पर मुस्कान फैल गई सिवाय दो के, श्यामली और विश्वनाथ। विश्वनाथ टेबल की दूसरी तरफ बैठे चाय की कप पकड़े बस श्यामली को देख रहे थे। वो उसे बार बार देख रहे थे लेकिन बिना किसी कठोरता के, ज्यादा एक एहसास के साथ जो वो खुद समझ नहीं पा रहे थे। उधर श्यामली ने सिर झुका रखा था जैसे किसी को पता ना चले कि उसकी आंखें अभी भी लाल हैं। इसी दौरान आर्यन टेबल पर आता है, चेहरा रात भर जागने जैसा, कम आंखें सूखी लेकिन कदमों में एक अजीब सी दृढ़ता। वो बैठने से पहले ही सबकी ओर देखकर बोला, सारी तैयारियां मैं करूंगा, जश्न की, सब कुछ, ये मेरे पापा के लिए है और ये तो मैं ही करूंगा। उसकी आवाज धीमी लेकिन मजबूत। किसी ने कुछ नहीं कहा, सबने बस सिर हिलाया क्योंकि ये बात उसके दिल से आई थी। विश्वनाथ ने भी शांत नजरों से अपने बेटे को देखा, कुछ कहना चाहकर भी कुछ नहीं कहा। श्यामली ने चुपचाप अपनी प्लेट पर नजर डाली। एक पल के लिए उसकी आंखें आर्यन की आवाज पर उठी लेकिन तुरंत वापस नीचे। उसके दिल में कुछ और ही ताकतें चल रही थीं, लेकिन किसी को कुछ नहीं बताया। नाश्ता खत्म होने लगा, परिवार इस खुशखबरी में खोता चला गया। सिर्फ तीन लोग अब भी चुप, श्यामली, विश्वनाथ और आर्यन। विश्वनाथ का कमरा, रात की दवाइयों की महक, ताजी चादरें और सन्नाटा। विश्वनाथ अपने कमरे में आ गया था, हल्का सा दर्द अभी भी था पर आदत के अनुसार उसने बिस्तर पर बैठते ही लैपटॉप खोल लिया। स्क्रीन की नीली रोशनी उसके थके चेहरे पर पड़ती जैसे उसे मजबूर कर रही हो कि थोड़ा रुक जाए, पर नहीं, वो अपने काम से ध्यान हटाना नहीं चाहता था। शायद खुद को व्यस्त रखकर अपने मन में उठते सवालों से बचना चाहता हो, खासकर श्यामली वाले। टाइपिंग की आवाज़ कमरे में गूंज रही थी तभी दरवाज़ा बिना दस्तक के खुला। आर्यन अंदर आया, तेज कदम पर चेहरे पर एक अलग सापनापन, पिता के लिए चिंता उसके हर हाव भाव में दिख रही थी। पापा, विश्वनाथ ने नज़र उठाई। हाँ बेटा, आर्यन उन्हें पास आया और हल्का सा झुककर बोला, आप ये काम मत कीजिए अभी, फिलहाल आपको आराम करना चाहिए, अगर कोई ज़रूरत हो तो मुझे बोलिए, मैं कर दूंगा। विश्वनाथ ने लैपटॉप बंद करते हुए कहा, कुछ खास नहीं है, बस ऐसे ही देख रहा था। आर्यन ने फिर गंभीर होकर कहा, पापा अपने ऊपर जोर मत डालिए और अगर कुछ बात है, कुछ परेशानी तो मुझसे कहिए, मैं हूं ना। उसकी आंखों में कल की रात की घबराहट अभी भी चमक रही थी। विश्वनाथ हल्का मुस्कुराया, तू चिंता मत कर और तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, कॉलेज का वक्त हो गया है, जा। आर्यन ने धीरे से सिर हिलाया लेकिन अभी जाने वाला नहीं था। वो आगे बढ़ा, अपने पापा के बगल में बैठते हुए बोला, पापा आपको पता है उस दिन जब मैंने आपको उस हालत में देखा था, उसकी आवाज़ टूट गई, मेरे दिल पर क्या बीती है। कमरे में गहरी खामोशी उतर आई।
आर्यन आगे बोला, माँ को पहले ही खो चुका हूँ, अब आपको मैं नहीं खो सकता, कभी नहीं। ये कहते ही उसकी आंखें भर आईं, पर उसने आंसू गिरने नहीं दिए। विश्वनाथ का दिल भर गया। उसने तुरंत आर्यन को अपने बाहों में खींचकर गले से लगा लिया। एक मजबूत प्यार भरा बाप बेटे का गले मिलना। पगले, विश्वनाथ ने धीमे से कहा, तू मेरी जान है, तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूं मैं। आर्यन ने भी कसकर अपनी बाहें कस दी। मैं भी पापा, अब आप बस ठीक रहिए, बस यही। कुछ पलों तक दोनों वैसे ही बैठे रहे। हवेली की बड़ी दीवारों में पहली बार एक सुकून भरी गर्माहट खुलने लगी। सीन धीरे धीरे फेड होता है बाप बेटे के इसी खामोश, गहरे और दिल छू लेने वाले लम्हे पर। दोनों एक दूसरे से अलग होते ही कमरे में हल्की सी दस्तक हुई। विश्वनाथ और आर्यन ने एक साथ उधर देखा। दरवाजा आधा खुला था। श्यामली अंदर आई, हाथ में स्टील की छोटी ट्रे जिसमें दवाई, पानी का ग्लास और एक हल्का सा भाप देता काढ़ा था। उसके कदम बेहद धीमे, जैसे कमरे की खामोशी का सम्मान करते हुए। साड़ी का पल्लू थोड़ा सा खिसका उसने चुपचाप संभाल लिया। नजरें झुकी हुई, चेहरा थका हुआ, लेकिन जिम्मेदारी आज भी उसी की थी। आर्यन खड़ा ही था जब श्यामली उसकी आंखों से टकरा गई। एक पल, सिर्फ एक पल, उसकी आंखें जैसे कांपी हों, पर वो तुरंत नीचे झुक गई। आर्यन ने उस एक नजर में बहुत कुछ देख लिया, थकान, डर, चिंता और एक अजीब सा बोझ जो वो अकेली ढो रही थी। पर उसने कुछ कहा नहीं, ना कोई सवाल, ना कोई टिप्पणी, बस चुपचाप एक कदम पीछे हट गया, जगह देते हुए। श्यामली धीरज से विश्वनाथ के करीब आई। दवाई का टाइम है, उसकी आवाज बहुत धीमी थी, लगभग फुसफुसाहट जैसी। विश्वनाथ ने उसे देखकर एक हल्की सांस ली, जो शब्दों में नहीं थी लेकिन बहुत कुछ कह गई। श्यामली ने ट्रे रखी, ग्लास थमाया, दवाई आगे बढ़ाई। हर हरकत में एक सावधानी, एक दूरी और एक अनकहा संकोच। आर्यन बस खड़ा देखता रहा, कभी श्यामली को, कभी अपने पापा को और कभी उस खाली हवा को, जिसमें अब बहुत सारे अनकहे सवाल तैर रहे थे। श्यामली जैसे ही पीछे हटने लगी, उसके कानों को विश्वनाथ की धीमी आवाज ने छुआ, थैंक्स। श्यामली का कदम रुक गया, बस एक सेकंड के लिए, फिर वो बिना कुछ बोले मुड़कर बाहर चली गई। कमरे में फिर वही सन्नाटा, पर इस बार उस सन्नाटे में तीन लोगों की धड़कनों की आवाजें थीं, और तीनों के मन में एक ही सवाल, ये दूरी आखिर ले कहां जाएगी।